संति मे गुरवो राजन बहवो बुद्धिमुपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो अट्टामिह तान् शृणु। तत्वदर्शी अवधूत दत्तात्रेय जी अपने जीवन में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि 24 तत्वों से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। गुरु तत्व सर्वत्र है, गुरु तत्व व्यापक है। ये गुरु शब्द भी बड़ा सुंदर है, इसमें दो धातुएं हैं, गृह निगरणे और गृह शब्दे। गृह निगरणे धातु से जब ये शब्द बनता है तो इसका अर्थ है गिरति इति गुरु, गिरति उपदिशति ज्ञानम, जो ज्ञान का उपदेश करता है वो गुरु है। क्योंकि अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। ज्ञान का और अज्ञान का विरोध है, ज्ञान का और क्रिया का, व्यवहार का, आचरण का विरोध नहीं है। जैसे तमः प्रकाशवत् अंधकार का विरोधी प्रकाश है, आप कितनी भी सुंदर चीजें रखें प्रकाश में, अंधकार में, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं है। आप प्रकाश में सोना रखेंगे तो भी वो विरोध नहीं करता है प्रकाश का, और आप अंधकार में रखेंगे तो भी अंधकार का विरोध नहीं करता है। दुनिया की कितनी भी सुंदर प्रकाश भिन्न चीजें वो अंधकार का विरोध नहीं करती हैं, लेकिन आप छोटा सा दिया जला दीजिए, बहुत छोटा सा प्रकाश पैदा कर दीजिए और वहां पर विरोध होना शुरू हो जाता है, अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। ऐसे दुनिया में कितने भी कर्म करे, कितने भी व्यवहार आचरण को पैदा करे, लेकिन आत्मज्ञान न हो तो हमारे स्वरूप का जो अज्ञान है वो कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कर्म ज्ञान का विरोधी, अज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। और ज्ञान को पाने का उपाय है गुरु। अब वो आप ज्ञान कहां से प्राप्त कर सकते हैं, वो आपकी रुचि है, आपकी सुविधा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। लेकिन अज्ञान को मिटाने के लिए अनिवार्य सत्य कोई चीज है तो वो ज्ञान है। इसलिए गिरति उपदिशति इति, जो ज्ञानोपदेश करता है या जिससे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं वही तो गुरु है। यहां पृथ्वी ने उन्हें कोई शब्द नहीं दिया है, ये बहुत गहरी बात है। गिरति उपदिशति ज्ञानम इति गुरु, और इसका दूसरा अर्थ होता है गृह निगरणे। गृह शब्दे धातु से जो बना लेते हैं तो यहां पर अर्थ होता है शब्द। गिरति अज्ञानम ज्ञानेन इति, आपका अज्ञान टूटना शुरू हो जाए। वह शब्द की जरूरत नहीं है, पहले अर्थ में आपको उपदेश की जरूरत पड़ती है, आपको शब्द की जरूरत पड़ती है। उपदिशति ज्ञानम, जहां उपदेश वो शब्द सापेक्ष, समझाने के सापेक्ष है, बोलना पड़ता है। शब्द का प्रयोग करके आपके अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न किया जाता है, ये गुरु का अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, शब्द की कोई जरूरत नहीं है और आपका अज्ञान गिरना शुरू हो जाए, आपके अंदर ज्ञान का होना शुरू हो जाए, ये दोनों भी अर्थ हैं। और ये जड़ चेतन दोनों भी संभव है। जैसे गुरु आपके सामने मौनम गुरुस्त व्याख्यान, शिष्यास्तु छिन्न संशया, आपके सामने ज्ञानी गुरु बैठे हैं, मौन हैं, और उनके उपस्थिति मात्र से आपके अंदर ज्ञान की धारा प्रकट होने लग जाए और आपके सारे संदेह मिटने लगे अपने आप, आपको कुछ करना न पड़े। जैसे सूर्य की प्रखर रोशनी के सानिध्य में आने के बाद बर्फ अपने आप पिघलना शुरू हो जाती है, वहां पर कोई प्रयत्न नहीं है, अपने आप स्वाभाविक, ऐसी उपस्थिति मात्र से परम पूज्य महाराज श्री, परम पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आप बैठ जाए और बैठने मात्र से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलना शुरू हो जाए, अपने आप संदेह मिटने शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो बहुत ऊंची अवस्था है, उनका ज्ञान अमूर्त है और वो वातावरण में है। उन्हें अपने ज्ञान को देने के लिए उनकी केवल उपस्थिति पर्याप्त है, बोलने की जरूरत नहीं है। या ज्ञान का मिटना और ज्ञान का होना केवल उपस्थिति मात्र से, वो गुरु हैं। और दूसरी चीज है, अज्ञान को मिटाने के लिए बोलना पड़े, कोशिश करना पड़े। आप बर्फ को पिघलाना चाहते हैं, रगड़ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, छू रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको पिघलाने की। कई बार गुरु को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। ये दोनों तरफ हैं, ये पिघलने की अवस्था, ये शिष्य की बड़ी गहरी अवस्था है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब फल पक जाता है, पेड़ में पक जाता है, तो उसको गिराना नहीं पड़ता है, वो अपने आप गिर जाते हैं। और कई बार उसको केवल एक निमित्त मिलता है, हवा का झोंका, उसके बगल से कोई पक्षी गुजर जाता है और वो फल गिर जाते हैं। आश्चर्य की बात। आपने कभी ध्यान दिया होगा, बचपन में आम को तोड़ने के लिए आपने बहुत पत्थर मारे और इतने पत्थर मारे ऊपर आम ही टूटने लग जाता, ऊपर ही फूटने लगता था, लेकिन वो डाल नहीं छोड़ता था। पत्थर मारा, आम आधा टूट गया है, फूट गया है, लेकिन वो अपनी डाल को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। आपने कितने पत्थर मारे, लेकिन जब वो पक जाता है तो आपका पत्थर डाल में लग जाता है, डाल हिलती है और डाल के हिलने से वो आम, वो फल गिर जाता है। आपके पत्थर को, डाल को लगने की भी जरूरत नहीं है, आपका पत्थर गुजरा उस फल के बगल से, اور اس پتھر کی ہوا لگی اس پھل کو اور وہ آم گر جاتے ہیں. کئی بار تو آپ کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ یہ آم ہمارے پتھر سے گرا ہے یا اپنے آپ گرا ہے. یہ اوستھا ہے, پریپکوتا ہے. وہ پھل اب پک گیا, وہ گرنے کو تیار ہے. ایسے سادھک کے جیون میں سادھنا کے پربھاؤ سے اس کا انتکرن اتنا نرمل ہو گیا ہے اور وہ اب گیان کو اپلبدھ ہونا ہی چاہتا ہے, اس کا اگیان مٹنے کو تیار ہے. اب ایسے سادھک کے لیے گرو کی کیول اپستھتی کی ضرورت ہے, وہاں گرو کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گرو کیول اپستھت ہیں, وہ دوسرے کے لیے اپدیش کر رہے ہیں گرو, اور ششیہ بیٹھے ہیں اور ان کو گیان ہو جاتا ہے. اپدیش دوسرے کو ہو رہا ہے اور ان کو گیان ہو جاتا ہے. وہ نمت ہیں, وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں. ایسے سادھک ہوا کرتے ہیں اچھ کوٹی کے, گرو کی کیول اپستھتی. یہاں پر اودھو دتاتریہ ہیں, بھگوتی پروش ہیں, اور انہیں اپدیش کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایسی لیلا کر رہے ہیں مانو ماتر کو اپدیش کرنے کے لیے, گرو کے مہتو کو بتانے کے لیے یہ لیلا کر رہے ہیں, اور وہ پرتھوی سے اپدیش گرہن کر رہے ہیں. وہ پرتھوی کو دیکھتے ہیں اور وہ پرتھوی کی اپستھتی, پرتھوی کا استتو ان کے اندر گیان کو بھر دیتا ہے, اسے پریرنا لیتے ہیں, اسے وہ اپنے جیون کو بنا لیتے ہیں. انہوں نے دیکھا پرتھوی کو, کیول دیکھا, اور وہ اپنے اندر اسے پریرنا لینا شروع کر دے. وہ پریرنا لے رہے ہیں دھیری کی, وہ پریرنا لے رہے ہیں کھما کی, وہ پریرنا لے رہے ہیں نرنتر شرم کی. وہ دیکھتے ہیں نرنتر شرم ہے, اس پرتھوی کا نرنتر شرم ہے. یہ بہت دھیروان ہے, یہ بہت کھماشیل ہے. میرے کو بھی ایسا ہونا چاہیے, میرے کو بھی ایسے دھیروان ہونا چاہیے, میرے کو بھی ایسے کھماشیل ہونا چاہیے, شرمشیل ہونا چاہیے. اور ایسے ہوئے بنا جیون کا نرمان سمبھو نہیں ہے, آدھیاتمک جیون کا نرمان ہی سمبھو نہیں ہے. جو اکرمنیہ ویکتی ہیں وہ اپنے جیون کا نرمان نہیں کر سکتا ہے, جو کھماشیل نہیں ہے وہ بھی اپنے جیون کا نرمان نہیں کر سکتا ہے. کھما کے ابھاؤ میں ہم بہت سارا کچرا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں. آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور کسی کا ہاتھ آپ کو لگا, چوٹ لگی, آپ کھما نہیں کرو گے تو کچرا آپ کے ساتھ آئے گا, آپ اس کو گالی بھی دو گے. آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ آپ اندھے ہو کیا؟ اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر بھی جاؤ گے تو بھی اس کو یاد کرو گے, اوہو اس آدمی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے کو ٹھوکر ماری. ہو سکتا ہے کئی دنوں تک وہ کچرا آپ کے دماغ میں پڑا رہے. اس لیے جیون میں کھما بھی ہونا بہت ضروری ہے. اپرادھ ہوا سامنے والے کا اور آپ نے اس کو بھلا دیا, آپ کو اپرادھ بھی اپرادھ معلوم نہ پڑے. کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ کو گالی بھی معلوم نہ پڑے. سامنے والے ویکتی نے آپ کے ساتھ برا ویوہار کیا لیکن آپ کو معلوم ہی نہ پڑے کہ سامنے والے نے برا ویوہار کیا ہے. یہ بہت بڑی کھما ہے, اور دھیروان ہونا بھی بہت ضروری ہے. دھیر مانے دھارن کرنے کی پرورتی, اب وچلت اوستھا ہے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وچلت ہو جاتے ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, مانو کہ ہم وچلت ہونے کو ہی بیٹھے ہیں. آپ کو پریشان کرنے کے لیے چھوٹا سا شبد بھی کافی ہے. इशारा काफी है, शब्द की भी जरूरत नहीं है। आदमी को अविचल होना चाहिए, ये शिक्षा ली उन्होंने, बहुत गहरी शिक्षा ली। अपने को लगता है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन व्यक्ति के जीवन के निर्माण के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। जीवन को जैसे अशांत करने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, वैसे शांत करने के लिए भी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, एक वाक्य भी। जीवन के निर्माण के लिए पर्याप्त है। उन्होंने जल से शिक्षा ग्रहण की, बहुत मजेदार, बहुत सुंदर। हम जल तो प्रतिदिन पीते हैं और वो जल को गुरु बना रहे हैं। हम पृथ्वी को निरंतर देखते हैं, हम खुद शरीर के रूप में पृथ्वी हैं, लेकिन हमें कभी पृथ्वी गुरु मालूम नहीं पड़ती है। उन्होंने जल को देखा और सोचने लगे, ये जल कितना स्वादिष्ट, जल का मूल स्वभाव मीठा है। जल का जो मूल स्वभाव है वो मीठा है, सरस है, हमारी प्यास बुझाता है। अब वो सोचने लगे, देखो जल मीठा है और वो दूसरे की प्यास बुझाता है, हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी हमारे स्वभाव में मिठास होना चाहिए, हमारे बोलने में मिठास होना चाहिए, हमारे आचरण में मिठास होना चाहिए। और ये मिठास केवल अपने लिए नहीं, ये दूसरे की प्यास को बुझाने के लिए। पानी दूसरे की प्यास बुझाता है, हमारा होना, हमारा अस्तित्व दूसरे की प्यास बुझाए, हमारा जीवन सहयोगी बने, दूसरे के अज्ञान को मिटाने के प्रति कारण बन जाए, दूसरे के दुख का हरण करने के प्रति कारण बन जाए। यही तो परोपकारिता है, यही तो दूसरे के प्रति अपने अस्तित्व का उपयोग है। हमारे होने का अर्थ क्या है फिर? हमसे तो अच्छा वो जल है जो दूसरे की प्यास बुझाते हैं, वो दूसरे का मददगार है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ज्यादा वो दूसरे के प्रति सहयोगी होता है। जितना ज्यादा बड़ा होगा वो दूसरे के लिए जिएगा। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बहुत उपयोगी हैं, ये मानव मात्र के उपयोगी हैं। आकाश तत्व बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है, और ये आकाश तत्व सबके प्रति कारण है, सबके प्रति सहयोगी है। ये आकाश सबको जगह देता है, ये वायु सबको ऑक्सीजन देती है, जल सबको जीवन देता है, ये दुनिया के सारे प्रकृति के पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं। उसका अस्तित्व एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति, अस्तित्व को जिलाने के प्रति कारण है। और ये व्यक्ति का होना सार्थक भी तभी है, आप हैं, हम जिए अपने परिवार के लिए, हम जिए अपने समाज के लिए, हम जिए अपने राष्ट्र के लिए, हम जिए अपने विश्व के लिए। और इसीलिए तो आप प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप ये प्रार्थना नहीं करते कि मैं अकेला सुखी हो जाऊं, आप अकेले सुखी कभी हो ही नहीं सकते हैं। आपके आसपास के लोग बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? आपके घर में लोग दुखी हैं तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में लोग दुखी हैं तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं, आपके समाज के लोग दुखी हो तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ये सुख एक व्यक्ति की भावना नहीं, ये समष्टि की भावना है। आदमी को लग सकता है दूसरे के दुख से हम सुखी हो रहे हैं, दूसरे के दुख में भी हम सुखी होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये लंबे समय संभव नहीं है। ये सुख की बहुत बड़ी भावना है और ये समष्टि की भावना है। अभी आपने ध्यान दिया होगा, बारिश होती है सबके लिए होती है, हवाएं चलती हैं सबके लिए चलती हैं, और उस बारिश से सारे लोग सुखी हो जाते हैं, हवा से सभी लोग सुखी हो जाते हैं, और बारिश न हो तो सारे लोग दुखी होना शुरू हो जाते हैं। ये सुख और दुख ये समष्टि तत्व है, इसलिए हम जिस समाज में जीते हैं वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व हमारे अंदर होना चाहिए। जिस परिवार में हम पैदा हुए उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग, ये प्रकृति तत्व है। और जब हम इससे दूर हो जाते हैं, जब इसको हम भुला देते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक दूसरे का सहयोग। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की जल से, ये जल बहता है दूसरे के, ये जल जीवन प्रदान करता है, प्यास बुझाता है। और इस जल का बहुत सुंदर एक स्वभाव है, स्वच्छता। जल स्वच्छ है और उसके सानिध्य में आने वाले व्यक्ति को वो स्वच्छ बना देते हैं। आप स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद वो जल आपको स्वच्छ कर देता है। स्वच्छ स्वयं होना और दूसरे को स्वच्छता प्रदान करना, ये जल का बहुत सुंदर स्वभाव है, गुण है। ऐसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, हमारे मन, हमारे विचार, हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, हम स्वच्छ हो, और वो स्वच्छता हमारे आसपास के लोगों को मिले। हमारे अच्छे आचरण से सामने वाला व्यक्ति आचरणवान बने, हम आचरण से दूसरे को आचरणवान बना सकते हैं, ये बहुत उपदेश की सुंदर प्रक्रिया है। हम किसी को समझाना चाहते हैं, हम किसी को ठीक करना चाहते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है, आपको होने की जरूरत है। आप किसी को यह न बोले कि आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो, आप स्वयं झूठ न बोले, आप स्वयं सत्यवादी बने, सामने वाला अपने आप आपके सत्यवादी से वो शिक्षा ग्रहण करता रहे। स्वयं होने की जरूरत है, दूसरे को बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरे को बनाने से कोई बनता भी नहीं है। एक हमारे आसपास की बात है, हम हमेशा दूसरे को बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरा कभी बनता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ये बात हम दूसरे को समझा देंगे, लेकिन आप दूसरे को समझाने के पहले आप खुद देखो कि ये बात हम समझे कि नहीं। आश्चर्य की बात, वो बात हम खुद स्वयं समझे नहीं है और हम दूसरे को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर आशा भी होती है कि सामने वाला समझ जाएगा। आप कभी किसी के सामने आप बोल दीजिए कि मेरा सिर दुख रहा है, वो सामने वाला तुरंत आपको दवा बता देगा, तुरंत दवा बता देगा। आप किसी को बोलिए कि मेरे को बुखार आया, वो तुरंत आपको दवा बता देगा। लेकिन आप उसको पूछना कि दवा तुमने कभी की है क्या, वो बोलेगा हमने तो नहीं की है, लेकिन दावा पूरा करेगा कि ये आप करोगे तो बिल्कुल अब ठीक हो जाओगे। वो दावा पूरा करेगा कि ये दवा आप करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन आश्चर्य की बात, वो दवा उसने कभी नहीं की है। ये व्यक्ति की जीवन की विडंबना है, आदमी सोचता है कि हमें दूसरे को बनाना है, दुनिया को बनाना है। परम पूज्य महाराज श्रीनि भागवत के प्रसंग में बहुत सुंदर बात कही। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने समाज के उद्धार का बहुत शक्तिशाली उपाय किया, बहुत कोशिश की, लेकिन समाज में सुधारना नहीं हुई। उन्होंने पुराणों की रचना की, 1,00,000 मंत्रों का महाभारत बनाया, ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया, वेदों के 4 विभाग कर अपने 4 शिष्यों को उनके आचार्य बना दिए। रोम हर्षन को पुराणों का आचार्य बना दिया। ये उस समय के समाज के निर्माण का बहुत बड़ा वो प्रयोजन, बहुत बड़ा कार्य था वो। लेकिन अंत में देखा समाज की सुधारना नहीं हुई है, और समाज की सुधारना करते करते वो स्वयं ही अशांत हो गए। असंपन्न मिवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तम, वो स्वयं भी अशांति का अनुभव करने लगे। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं पुरुषार्थ तो किया समाज के निर्माण का, और वो बहुत सार्थक था, बहुत जरूरी था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। नारद जी महाराज के दर्शन हुए। नारद जी महाराज ने पूछा, भगवान आप स्वस्थ से तो हैं? व्यास जी महाराज ने अपने मन की पीड़ा बता दी, भगवान सब कुछ ठीक तो है, तथापि नात्मा परितुष्यते में, मेरा शरीर ठीक है, ज्वर आदि रोग नहीं है, मेरा मन भी ठीक है, काम आदि विकार भी नहीं है, तथापि नात्मा परितुष्यते में, उसके बाद भी मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं, और आप मेरे को उपदेश करो। न्यूनम मलम विचक्ष्व, नारद महाराज ने फिर उन्हें आत्मचरित्र के द्वारा मार्ग दिया। नारद महाराज ने कहा स्वयं आचरण करो, जो तुम मानव मात्र के जीवन का निर्माण करने के लिए उपदेश कर रहे हो वो तुम स्वयं अपने जीवन में उतारो। स्वयं पहले शांत हो जाओ, पहले तुम शांति को पालो। फिर व्यास जी महाराज बैठ गए और बैठ करके अभ्यास किया, साधना की, और उसके बाद फिर समाधि का अनुभव हुआ। समाधि की अवस्था में उन्हें भगवत तत्व का दर्शन हुआ, भगवान की योग माया के दर्शन हुए, परम शांति को प्राप्त हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने भागवत का निर्माण किया। और समाज का निर्माण हुआ। वास्तविकता तो ये है, दूसरे की मदद करने की बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पहले स्वयं की मदद करना बहुत जरूरी है। प्लेन में वहां लिखा रहता है, दूसरे की मदद करने के पहले खुद को जैकेट पहनने के लिए बोला गया, दूसरे को जैकेट देने के पहले खुद पहन लो। आप सबको जैकेट वितरित कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद नहीं पहना है, आप पहले खुद पहनिए और उसके बाद फिर सबको बांटिए। आपको तैरना आता है तो आप खुद अपनी रक्षा कीजिए पहले, और उसके साथ साथ फिर दूसरे की भी। आपको खुद तैरना नहीं आता है तो आप दूसरे की रक्षा कैसे करोगे? इसलिए जीवन में स्वयं उतारे अपना जीवन बनाया बनाए जाए, और जब जीवन का निर्माण होता है तो अपने आप फिर बहुत सारी चीजें सुलझना शुरू हो जाती हैं। जो चीज हमारे जीवन में नहीं है वो दूसरे को नहीं दे सकते हैं, और देने का प्रयत्न संदिग्ध है, वो जरूरी नहीं कि सार्थक होगा। महात्मा गांधी जी नमक खाते थे, डॉक्टर ने कहा कस्तूरबा को नमक नहीं खाना है, उन्होंने कहा कि तुम्हें नमक नहीं खाना है, वो मान नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने समझाया कि नहीं तुमको नमक नहीं खाना चाहिए, उन्होंने कहा तुमको मालूम है क्या बिना नमक का खाना क्या होता है, बहुत कठिन है। और उसी दिन महात्मा गांधी जी ने नमक खाना छोड़ दिया, और जब नमक खाना छोड़ने के बाद महात्मा गांधी जी ने समझाया नमक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और कस्तूरबा ने तुरंत छोड़ दिया। कस्तूरबा समझ गए ये खुद नहीं खा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप स्वयं खा रहे हैं और दूसरे को बोल रहे कि मत खाओ, तो सामने वाले को संदेह होगा कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्योंकि खुद खाता है। और जब आप स्वयं छोड़ रहे हैं, आपने स्वयं छोड़ा है और आप बोलोगे तो आपके बोलने पर भरोसा जगेगा, विश्वास होगा, हमारे जीवन में वैराग्य हो और वैराग्य की बात करें तो वैराग्य पर भरोसा जगता है, हमारे जीवन में दया हो और दया की बात जब हम करते हैं तो दया पर भरोसा जगता है, वो दया सही मालूम पड़ने लगती है। इसलिए यहां पर कहते कि स्वयं बनो और उसके बाद बनाओ, जल स्वयं स्वच्छ और वो दूसरे को स्वच्छ करता है। जल स्वयं स्वच्छ नहीं है तो वो कितना भी प्रयत्न कर आपको स्वच्छ नहीं बना सकता है, आप गंदे जल से हाथ धोओगे स्वच्छता नहीं आएगी और गंदगी बढ़ेगी। इसलिए सूत्र लिया जल से अवधूत दत्तात्रेय ने, जल से सूत्र लिया, जल ने दिया नहीं, यहां शिक्षा दी नहीं गई, यहां शिक्षा ली गई। देना और लेना ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। आपको दिया जा रहा है, वहां आपका स्वातंत्र्य नहीं है, आपको दिया जा रहा है वहां देने वाला स्वतंत्र है, लेकिन लेने वाले की स्वतंत्रता नहीं है, वहां जबरदस्ती जैसा है, जैसे पत्थर के ऊपर पानी बरस रहा है, जरूरी नहीं उस पत्थर में पानी प्रवेश करे। जहां पर लेने की प्रक्रिया हो, जहां पर ग्रहण करने की प्रक्रिया हो, वहां अपने आप शिक्षा मिलनी शुरू हो जाए, ये ग्रहणशीलता है। यहां जल से शिक्षा ले रहे हैं, वहां जल दे नहीं रहा है, अपने आप ले रहे हैं। और ये बहुत गहरी बात है, हम अपने आसपास के वातावरण से, हम आसपास के लोगों से, हम अपने जीवन से शिक्षा ले, देने की जरूरत कौन कितना आपको देगा, आपको कौन कितना सिखाएगा, आपको कदम कदम पर चलते हुए बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करना है और जीवन का निर्माण करते जाना है। जल ने शिक्षा दी नहीं, ली उन्होंने, अवधूत दत्तात्रेय ने जीवन को स्वच्छ बनाओ, अपने जीवन को स्वच्छ बनाओ, विचारों को स्वच्छ बनाओ। भावनाओं को स्वच्छ बनाओ, आचरण को स्वच्छ बनाओ, और स्वच्छ बनने के बाद फिर वो आचरण दूसरे को मिले, हमारे सानिध्य में दूसरा भी स्वच्छ बन जाए, हमारे सानिध्य में दूसरा भी ज्ञानी बन जाए, हमारे सानिध्य में दूसरा भी भक्त बन जाए। ये जल से शिक्षा ली उन्होंने, स्वच्छ बनो और हमारे सानिध्य में आने वाले व्यक्तियों को भी स्वच्छ बनाओ। सामान्य शिक्षा है, बहुत छोटी सी शिक्षा है, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। अग्नि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, देखा अग्नि जल रही है, और उन्हें देखा अग्नि एकदम उठ रही है, वो आश्चर्यचकित हो गए। अग्नि का स्वभाव है उठना। आप माचिस की तीली जलाते हैं तो अग्नि उठती है, और वो पैदाइशी स्वभाव है, अग्नि पैदा होते ही उठना शुरू कर देती है, उसके अंदर ऊर्ध्वगामिता है, उठने का स्वभाव, गिरने का स्वभाव नहीं। अग्नि उठती है, बहुत छोटा सा अग्नि का कण भी पैदा होते ही वो उठना शुरू कर देता है, उसका मूल है सूर्य, उसका मूल है, उसका मूल ऊपर है, और वो उठना शुरू कर देती है। ऐसे हमारे स्वभाव को बनाना चाहिए, ऊर्ध्वगामी बना लेना चाहिए, हमारे स्वभाव को ऊर्ध्वगामी बना लेना चाहिए, उठने का स्वभाव। ये गिरने का स्वभाव अच्छा नहीं है, गिरे हुए रहने का स्वभाव अच्छा नहीं है, ये तमोगुण है, ये गिरे हुए होना ये तमोगुण है, ये उठना सत्वगुण है, ये ऊर्ध्वगामिता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमारे जीवन में तीन गुण है, एक तमोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा सत्वगुण। जब तमोगुण पैदा होता है तो हम गिरे हुए होते हैं। आपके मन में जब तमोगुण आ जाता है तो आपका शरीर जड़ होने लगता है, आप अरस में जाते हैं, आलस बोलते हैं, आलस माने अरस है। अब आपको जीने में रस नहीं है, आपको बैठने में रस नहीं है, सुनने में रस नहीं है, भजन करने में भी रस नहीं है, आप कुछ काम कर रहे थे उसमें भी रस नहीं, क्योंकि आपके अंदर आलस आ गया है। यह तमोगुण है, ये आलस में अरस हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन तमोगुण आ जाए फिर आप बार बार घड़ी देखना शुरू कर देंगे, आपका रस भंग होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो तमोगुण आ गया, और तमोगुण के साथ फिर आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, नींद में रस, नैष्कर्म में रस, यही तो तमोगुण है। अब आपको नींद बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि तमोगुण आ गया है, आपको नैष्कर्म अच्छा लगने लगेगा, कुछ नहीं करना अच्छा लगने लगेगा, आप लिख रहे हैं लिखना छोड़ देंगे, माला जप कर रहे हैं माला छोड़ देंगे, ध्यान कर रहे हैं ध्यान छोड़ देंगे, क्योंकि अब उस करने में रस नहीं, अब निष्कर्म में रस, छोड़ने में रस है, ये तमोगुण है। और जब रजोगुण पैदा हो जाता है तो आप करने में रस लेते हैं, क्रिया में रस आता है, तब उन पैदा हो जाए तो आप भागना शुरू कर दें, आप सोचेंगे चलो घूमने के लिए चलते हैं, आप सोचेंगे चलो ये देख लेते हैं, चलो सुन लेते हैं, चलो खा लेते हैं, बहुत सारी चीजों के प्रति आपके अंदर प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और उस प्रवृत्ति में, उस क्रिया में रस पैदा हो जाते हैं, लेकिन उन क्रियाओं में अनियंत्रितता रहती है। रजोगुण की यही विशेषता है और ये कमी भी, आप जब खाने लगेंगे तो खाने में कभी संतोष नहीं होगा, आप उन्हें खाते रहो, दिन भर खाते रहो, आपके अंदर रजोगुण है, आपको घूमने से कभी संतोष ही नहीं होगा, घूमते ही रहो घूमते ही रहो घूमते ही रहो घूमते ही रहो, वो आपको अखंड अनंत क्रियाओं में ले जाएगा। आप यहां बहुत शांति से बैठे हैं लेकिन रजोगुण पैदा हो जाए तो आप सोचोगे काश नहीं आती तो अच्छा होता, उधर घूमने चले जाते अच्छा होता, आप यहां शांति से नहीं बैठ पाओगे। रजोगुण पैदा होने के बाद आप शांति से नहीं बैठ सकते, ये रजोगुण आपको भ्रमाता है, आपको क्रियाओं में विचलित कर देता है। और तीसरा गुण है सत्व गुण, आपके अंदर सत्व गुण आ जाए, सत्व गुण में शांति है, सत्व गुण में रचनात्मक सृजनात्मकता है, आपके मन में सत्व गुण पैदा हुआ, आपका मन शांत होगा, समाहित होगा, वो रचनात्मक होगा और उस रचनात्मकता में विध्वंस नहीं होगा, उस रचनात्मकता में रचना होगी। कई बार हम रचना भी कर लेते हैं, रजोगुणी आदमी रच लेता है, लेकिन वो रचना भी कई बार विनाश के प्रति कारण बन जाती है, लेकिन सत्वगुणी रचना में रचना है, जीवन का निर्माण है, आप शांत हैं, आप समाहित हैं और आपका मन आनंद में है, उल्लास में, आपके अंदर धृति उत्साह है, आप बैठे हैं सत्संग में, आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा, शांति से बैठकर श्रवण करने में आनंद का अनुभव होगा, आपके शरीर में हल्कापन होगा, बहुत हल्का हल्का मालूम पड़े, आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आपके अंदर सत्व गुण पैदा हो जाए तो आपका शरीर फूल की तरह होने, फूल की तरह बनेगा। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्वगुण की परिभाषा दी, सत्वगुण लघु होता है, लघु माने हल्का, हमारा शरीर हल्का होगा, हमारा मन हल्का होगा, प्रकाशकम हमारे मन में प्रकाश होगा, हमारे मन में ज्ञान, हमारे मन में चेतना होगी, ये तीन गुण है। इसमें सत्वगुण ऊर्ध्वगामी, सत्व गुण की अवस्था में हमारा अस्तित्व ऊर्ध्वगामी होता है, हम उठना चाहते हैं, हम गिरना नहीं चाहते, ये तमोगुण और रजोगुण व्यक्ति को गिरा देता है और सत्वगुण आदमी को उठाता है ऊर्ध्वगामी। ये उन्होंने शिक्षा ग्रहण की अग्नि से, अग्नि की चिंगारी से जो उठती है, इसलिए आदमी को हमेशा उठने का प्रयत्न करना चाहिए, ऊर्ध्वगामी विचारों में जीना चाहिए, अच्छे विचारों में जीना चाहिए, अपने मूल के तरफ सोचना चाहिए, मूल परमात्मा है, ऊर्ध्वमूल मदशाख मश्वत्थम प्राहु रव्ययम, हमारा मूल परमात्मा है और हम उठे परमात्मा के बारे में सोचे, आत्मा के बारे में सोचे, यही तो ऊर्ध्वगामिता है, हमारे अस्तित्व की ऊर्ध्वगामिता ये परमात्मा के बारे में सोचने में, जप करने में, ध्यान करने में, परोपकार करने में, सृजनात्मक विचारों के जीने में, ये शिक्षा ग्रहण की उन्होंने अग्नि से, और भी बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की। आज वाणी को यही विराम। आज दीपावली का दिन है, सबको बहुत बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं। हम दो मिनट के लिए जप करेंगे। ओम ह्रीम नमः शिवाय,
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 ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।